कव्योऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभा किं कर्म किम् अकर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसे अशुभात् किम कर्म किम अकर्मेति कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस संबंध में कवि भी कवि मतलब बुद्धिमान व्यक्ति भी अत्र मतलब इस विषय में मोहित हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता क्या करना है। तत्ते कर्म प्रवक्षामि वह यानी इस संबंध में मैं तुमको कहूंगा प्रवक्षामि मतलब कह रहा हूं कहना चाहिए कहूंगा यज्ञात तो उसको जान करके मोक्ष से अशुभात अशुभ से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। ये तो बड़ा स्पष्ट है कि कर्म करना क्या होता है लेकिन शास्त्र के अनुसार किस प्रकार से कर्म करें कि बंधन न लगे इस संबंध में व्यक्ति मोहित हो जाता है। इस बारे में बोलेंगे गीता भूषण टीका। क्या कर्म के संबंध में कोई शंका है क्योंकि आप इस बात पर विशेष बल दे रहे हैं कि पूर्ववर्ती जनों का अनुसरण करते हुए ही कर्म करना चाहिए जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती जनों का अनुसरण किया था। एक प्रश्न समझ में आया जो लिंक बना रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या बोला था पूर्वे पूर्वतरह कृतम जैसे पुणे के पुराने लोगों ने किया था पुराने लोग अर्थात विश्वान इत्यादि ने किया था उसी प्रकार से आप कर्म करो और उनके कर्म करने का विशेष प्रभाव क्या हुआ था किसी को याद है विवस्वान आदि जो भगवान के शिष्य थे उन्होंने किस प्रकार से कर्म किया और उसका क्या भाव माइक पे बताओ प्रश्न कर रहा हूं मतलब माइक पे बताइए आपने आपने कौन बोला कौन बोला कौन बोला अभी
मोक्ष को प्राप्त कर गए और जैसा भगवान ने जिस प्रकार से कर्म करने कहा था उसी तरीके से
निष्काम
कर्म।
देखिए निष्काम कर्म जो है भक्तों की साधना नहीं है लेकिन उस एटीट्यूड को जरूर हमें पकड़ना है। भले ही हम निष्काम कर्म योग की हमारी साधना नहीं है लेकिन निष्काम भाव जरूर हमारा महत्वपूर्ण बात है। निष्काम भाव से भगवान की सेवा करने से ही भगवत प्रेम की प्राप्ति होती। सकाम भावना से करने से पहले निष्काम बनेगा उसके बाद प्राप्ति होगी। सकाम भावना वाले व्यक्ति को भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती तुरंत। पहले वो निष्काम होगा निष्काम के बाद वह भगवान प्रेम की प्राप्ति करेगा। सो लाइक दैट तो ये एक भगवान बता रहे हैं कि जैसे इसमें कोई इसमें मतलब ये बहुत गहन विषय है किस प्रकार से कर्म करते हुए भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है ये बहुत गहन विषय है। इस संबंध में देखो जैसे तुम्हारे पूर्ववर्ती राजाओं ने पूर्ववर्ती भक्तों ने किया है उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। हमें लगता है कि हम कुछ भी बोलेंगे कुछ भी देखेंगे कुछ भी सुनेंगे और कुछ नहीं होगा लेकिन सबका बिल आप जानते हो हमको आगे भुगतना पड़ता है तो इसलिए संभल के कार्य करना चाहिए। निश्चित रूप से है भगवान मान लो जी उत्तर देते हैं कि शंका में कोई शंका है क्या तो उसमें कह रहे हैं निश्चित रूप से है मुक्त होने की इच्छा रखने वालों के लिए कैसे कर्म करने चाहिए और वह ज्ञान क्या है जो कर्म के विपरीत है अर्थात अकर्म और उन कर्मों में निहित है। जो धीमान है वह भी इस विषय में मोहित रहते हैं और इस संबंध में यथात्म निर्णय नहीं कर पाते हैं। इन लाइनों को समझ लीजिए क्या क्या डाउट है कि जो व्यक्ति मुमुक्षु भी पिछले श्लोक में आया था ना जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है जगत पे दोबारा जन्म नहीं लेना चाहिए उसे क्या कर्म करना चाहिए। हम लोग तो देखिए भगवद गीता की चर्चा कर रहे हैं तो इन शब्दों से कुछ हमारा परिचय भी है लेकिन जब आप बाहर की दुनिया के लोगों से कभी कभी इंटरेक्ट कीजिए तब हमको समझ में आएगा कि मुक्ति जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मुक्ति जैसा शब्द भी उनकी वोकैबुलरी में नहीं है और कदाचित वो वृद्ध हो जाते हैं तब वो कहते हैं अब तो हम मुक्त होना चाहते हैं एज इफ कि वृद्ध होने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। क्या आपने सुना ऐसे अपने कभी परिवार वालों को कि जब वृद्ध हो जाते हैं कहते हैं हम तो बस अब मुक्त होना चाहते हैं, तो कि बिना मुक्त हुए मुक्त के मुक्ति के कर्म किए बिना व्यक्ति थोड़ा मुक्त हो जाता है, मरने का अर्थ मुक्ति तो नहीं है आप जानते हैं। तो क्या कर्म करने से हम मुक्त होंगे ये कठिन है, ये बुद्धिमान लोगों को भी समझ में नहीं आता। तो फिर जो पूरी तरह से भौतिकता में क्या कहते हैं प्रकृति में विलीन है भौतिकता में लिप्त है होने के उन्हें क्या समझ में आएगा, वो तो उनका गोल ही नहीं है। तो एक बात समझ में नहीं आती क्या कर्म करने से, यानी कर्म के संबंध में क्या दिक्कत है, कर्म के संबंध में क्या शंका है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या शंका प्रस्तुत हो रही है कि वह क्या कर्म है जिसके द्वारा हम मुक्त होंगे, ये शंका है। और उसके बाद कह रहे हैं अकर्म के संबंध में क्या है कि वह ज्ञान क्या है जो कर्म के विपरीत है। जब ज्ञान अवस्था में व्यक्ति आ गया तो प्राय लोग सोचते हैं कि अब उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उसको बोध हो गया तो अब उसको हृदय शुद्ध हो गया तो उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं। तो वह ज्ञान क्या है जो कर्मों में निहित है, अब इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, तो उसमें उसके हृदय में आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो उसके हृदय में आत्मज्ञान की का आविर्भाव हो जाता है, आविर्भाव मतलब प्रकट्य प्राकट्य हो जाता है। तो यानी कि जो आत्मज्ञान है वह निष्काम कर्म के गर्भ में स्थित रहता है, अगर ऐसा कहा जाए तो। आचार्य इस चीज को इस भाषा में बोलते हैं, जो आत्मज्ञान है, आत्मानुभूति है, आत्मसुख है, आत्मा का सुख है, वह निष्काम कर्म के अंदर ही रहता है। इसके उसको भी लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसा कि अर्जुन कह रहे थे कि हम जो है अब युद्ध नहीं करेंगे, चले जाएंगे यहां से और हम संन्यास ले लेंगे, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहे थे कि निष्काम भाव से अगर वो क्षत्रिय का कर्म करते हैं तो उससे उनको आत्मज्ञान में उन्नति प्राप्त होती है। कोई पूछ रहे थे आप इस संबंध में, दो शंका यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही है।
कर्म का मतलब यहाँ पे क्रिया बोला जाए, फ्रूटिव वर्क बोला जा रहा है।
कर्म का अर्थ है, देखिए सकाम कर्म से तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, यहाँ पे कर्म का अर्थ हम जो समझ रहे हैं वो यही है कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, किस प्रकार से व्यक्ति कर्म करे कि वह मुक्त हो जाए, यही बात आ रही है। बार बार यहाँ पे कर्म के संबंध में बात आ रही है, तो यही बात आ रही है कि कर्म का अर्थ निष्काम भाव से कर्म करना, इसके कंटेक्स्ट में। वैसे कर्म के अलग अलग अर्थ भी होते हैं, जैसे आप बता रहे हैं सकाम कर्म। जो धीमान है वह इस विषय में मोहित रहते हैं और उसे संबंध समझ नहीं पाते हैं। मैं सर्वेश्वर हूं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, और सर्वज्ञ हूं, और मैं तुमको कर्म और अकर्म के संबंध में बताऊंगा। अकर्म का अर्थ है जो कर्म के विपरीत हो या उससे भिन्न हो, अर्थात ज्ञान, आत्मज्ञान। मैं तुम्हें कर्म के विषय में बताऊंगा और अकर्म के विषय में भी, जिसे जानकर अभ्यास करके और अनुभव करके तुम संसार से मुक्त हो जाओगे। तीन चीजें हैं, क्या? कर्म के विषय में जानना, उसका अभ्यास करना और अनुभव करना। आत्मज्ञान का अनुभव करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है। एक छोटा सा प्रश्न होगा कि हम इस जगत में फंसे क्यों हुए हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, उसका सिंपल सा उत्तर दे दीजिए, माइक पे बताइए।
अविद्या और अज्ञान के कारण बंधे हुए, अपनी गलत पहचान करते हैं इसीलिए बंधे हुए,
गलत पहचान करते हैं। ठीक है, सही उत्तर है, लेकिन क्या? सिंपल, इच्छाओं के कारण। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, भोंग क्या है वो, सोचती और कांक्षती, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, और ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे करके हम सोच रहे हैं, और इसकी वजह से बार बार हमको जन्म प्राप्त हो रहा है। ये भौतिक इच्छाओं की बात कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति आत्मज्ञान में आत्मतृप्त हो जाता है, भक्ति में तृप्त हो जाता है भगवान की, तो इस जगत की इच्छाओं से वो मुक्त हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये सिंपल सा उत्तर है, तो ये बात भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए अनुभव कृष्ण प्रभु। एक बात मैं बताना चाह रहा था कि प्रभुपाद जी बार बार कृष्ण भावनामृत में कर्म की बात क्यों करते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है और यही ज्यादा एडवांस्ड भी है। इसमें हम केवल वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित नहीं कर रहे हैं, अपितु सारे कर्मों को कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं। नहाना धोना, शरीर का ध्यान रखना, खाना पीना, सब कुछ भगवान को समर्पित कर रहे हैं। ये बातें वैसे सातवें अध्याय में, नवे अध्याय में बड़ा स्पष्ट रूप से आ जाएंगी। तो प्रभुपाद जी उसी बात को समझा रहे हैं भक्ति को लेकर के। पढ़ेगा,
कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार करना चाहिए।
पूर्ववर्ती बोलिए, पूरा बोलिए,
पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार करना चाहिए।
क्यों? ठीक है, हाँ वो पार कर गए हैं। वैसे बहुत सीधी बात है, एक भक्त की बहन है, उनको अभी डेंगू हुआ, तो मैं क्या करना क्या करना, प्लेटलेट डाउन हो गया। हमने कहा गिलोय गिलोय गिलोय, क्यों? कि मेरे को भी डेंगू हुआ था, मैंने पिया था, मैं 3 दिन में ठीक हो गया था। तो ये अनुभूत बात है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई थ्योरी की बात है। कोई पूर्ववर्ती व्यक्ति जो है बीमार थे, तो उन्होंने दवा करी, उसे वो ठीक हो गए, तो हमारे जो आगे वाले लोग हैं ये भी दवा करेंगे, ठीक हो जाएंगे। दुनिया में यही तो कर रहे हैं हम लोग, कोई नया कार्य तो नहीं कर रहे। तो उसी प्रकार से जो पूर्ववर्ती भक्त है वह भी भगवान को प्राप्त किए हैं। इसको प्रमाण भगवान ने स्वयं किया था, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भवमागत, ये बोला था। तो इसी बात को बोल के चल रहे हैं कि यही चीज स्थापित बात ऐसे करिए। यही चीज आप दूसरे अध्याय में भी देखेंगे भागवतम के प्रथम स्कंद के, उसमें सदाचार को स्थापित कर रहे हैं कि भक्तों ने जो लोग भगवान विष्णु की पूजा किए, वही पूर्व में भी भगवान की विष्णु की पूजा करके अनेक अनेक लोग भगवान के धाम की प्राप्ति किए। तो उस पर कहा श्रीधर स्वामी कहते हैं सदाचार को स्थापित करने के लिए श्लोक बोला जा रहा है। सदाचार मतलब पहले के भक्तों ने क्या आचरण किया। बढ़िया, आगे
इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए,
ये लाइन समझ में आई आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। देखिए, कर्म वैसे ही किया जाना चाहिए जैसे पूर्ववर्ती आचार्य ने किया। कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या कर्म है और क्या अकर्म है इसके संबंध में बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है। तो पूर्ववर्ती आचार्यों का प्रिसीडेंस बोलते हैं हाँ, नहीं फॉलोइंग द प्रीवियस आचार्य, तो इसका प्रिसीडेंस का मतलब होता है पहला, क्या उसका उदाहरण आपको प्राप्त हो रहा है। हाँ, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल सेट किए उसके अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए।
कृष्ण भावनामृत में कर्म,
मैं मुझे लग नहीं रहा कि समझ में आई बात। कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं करना चाहिए, समझाइए।
जैसा पिछले आचार्यों ने किए, मतलब हमको पता ही नहीं चलेगा हम गलत कर रहे हैं।
भले, अरे मैं बुद्धिमान हूं तो
नहीं, नहीं तो शास्त्रों से जैसे पिछले आचार्यों ने किया है तो उनके उदाहरण से हम सीखते हैं और उसी को अपने जीवन में।
अरे मैं कह रहा हूँ कि हम बुद्धिमान तो है ना, ये बात
पता नहीं चल पाएगा।
हाँ, ये बात गीत श्लोक में बोल रहे कि बुद्धिमान व्यक्ति भी संबंध में मोहित हो जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। छोटा सा एग्जाम्पल महाप्रभु की लीला से, कि तपन मिश्र बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे लेकिन कंफ्यूज हो गए कि साधन साध्य क्या है। तो महाप्रभु ने कहा हरिनाम जप कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे करके। ये साधन साध्य क्या है, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है स्पष्ट नहीं होता। तो इसीलिए पूर्व पूर्व अगर आचार्यों की बात सुन करके समझ करके देखिए, आप कितने भक्तों का प्रचार करेंगे ना, बोलेंगे हमको हरि नाम पे श्रद्धा नहीं हो रही। क्या आप ऐसे लोगों से मिले? तो शास्त्री जी कारण क्या?
मैं कुछ साधन शास्त्र तो पता चल जाता है ना, कोई अच्छे जो जो शुद्ध गुरु है उनसे।
यही तो बोल रहा हूँ मैं, जब हृदय शुद्ध नहीं है तो व्यक्ति को साधन और साध के विषय में समझ में नहीं आता।
हृदय से जब तक वो प्योर डिवोटीज मिलेंगे नहीं तब तक।
एग्जैक्टली, अरे भाई मेरा पॉइंट समझिए, मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूँ। जिसका हृदय शुद्ध है नहीं, उसको समझ नहीं आता कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे कैसे प्राप्त करना है। पहली बात तो जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, है कि नहीं? जब भक्ति करते करते आपको लग रहा है इतना आसान है नहीं, क्या आपको लगता है कि इस कॉन में सभी लोग प्योर डिवोटी बनने के लिए आए हैं? आपका उत्तर क्या है माइक में बताइए।
डिवोटी बनने आए
डिवोटी बनने आए हैं, यह भी प्रश्न चिन्ह है। अगर वह सही भक्तों के संग में रहें तो ये सब आप लोग अपने अनुभव से, पता नहीं अभी कितना अनुभव है इस्कॉन के अंदर रहते हुए। इस्कॉन परफेक्ट है, प्रभुपाद जी ने प्रोसेस परफेक्ट दिया है, लेकिन क्या हम उस परफेक्ट प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं, वह हर व्यक्ति को प्रश्न लगाना पड़ेगा। अरे आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा, समझ में आ जाएगा। IIT में बहुत सारे लोग होते हैं, 3 लाख लोग बैठते हैं, तो सारे लोग क्वालिफाई नहीं करना चाहते, मम्मी के डर से पिताजी के प्रेशर से फॉर्म भर देते हैं। अब पता नहीं कैसा अनुभव, हमारा तो अनुभव है, भर देते हैं लेकिन उनको कोई एग्जाम देने की, पास करने की तैयारी करने की इच्छा नहीं होती। हाँ बोलिए।
कुछ जगह हमने कुछ बहू में ना वो UPSC की तैयारी करते ताकि खाना ना बनाना पड़े।
यस 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 यस, ये बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। और इसी प्रकार से दीनबंधु प्रभु बोलते कोई ब्रह्मचारी रह सकता है और वो जप कर सकता है ताकि उसे आश्रम से ना निकाला जाए। पे योर रेंट जपा, किराए देते ना, उस तरह के सुलम वाला कर रहा। तो खैर बात ये आ रही है कि कर्म अकर्म का क्या उद्देश्य है, इस संबंध में बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है, इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों से सुनना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ग्रंथों को हमको खूब सुनना चाहिए, तब हमारा हम समझ पाएंगे जीवन के लक्ष्य क्या है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट लाइन बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अ पर्सन विद अल्टीरियर मोटिवेशंस कैन नॉट अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसे कुछ है। द पर्सन विद अल्टीरियर मोटिवेशंस, अल्टीरियर कुछ हिडन मोटिवेशंस है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या वह कृष्ण भावना की फिलोसफी, क्या बोला जा रहा है। आप सब लोग सिंसियर डिवोटीज हैं इसलिए समझ पाते हैं, लेकिन कोई इनसिंसियर होगा उसे समझ, उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा, समझ ही नहीं आएगा तो क्या बोला जा रहा है।
यस, जैसे हरिनाम महिमा में कहा जाता है कि कोई हराम हराम भी बोलता है तो भगवान उसको राम ले लेते हैं, या राजमा बोलता है तो रा काट उसको जो है ले लेते हैं, हरियाणा बोलता है तो भगवान हरी आना, सारे फल सारे ले लेते हैं।
कि आप मैं, तो आपकी हम तारीफ भी करेंगे और थोड़ा डांटेंगे भी, आप इतना बढ़िया से जवाब करते हैं तो क्या हरी राजमा बोलते हैं।
अब मैं आपके बोलना चाहता हूँ कि अगर इस तरह से भी कोई करता है तो उसको हो जाता है, तो कोई किसी तरह से ही भगवान नाम ले रहा है, चाहे अपने अपनी स्वीकृति के सोने के कारण या जैसे भी है, लेकिन वो एक बार भी हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहा है तो कहा जाता है कि वो स्वीकृति होगी, मे बी उत्तरोत्तर, लेकिन एक ना एक दिन तो वो आगे,
उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या हम लोग, हम किस असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं? यहाँ सब ब्रह्मचारी हैं, अपना जीवन भगवान को समर्पित किए हैं, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूँ। क्या उस तरह से आप बताइए हरे राजमा वाला जब करना चाहते हैं, आप अच्छे से जब करते हो, दैट इज वेरी गुड। भक्त कभी भी संतुष्ट नहीं होते अपनी भक्ति के प्रोसेस, तो वो डिस्कशन किसके बीच में हो रहा है, वो प्रीचिंग में तो कोई कैसे भी हरे कृष्णा करे ठीक है,
जैसे आप ही बोलते हो कि जैसे अधिकार की बात है तो आगे धीरे धीरे आ सकते हैं,
उसमें तो
है तो कोई।
अब देखिए जैसे कि मैत्रेय मुनि थे, प्रभुपाद जी खुद उसमें लिखते हैं कि वो शुद्ध भक्त नहीं थे, लेकिन जब उद्धव जी को भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे थे तो भगवान की ही व्यवस्था थी कि वह भी आकर सुन सके। ये तो है कि हराम हराम बोलने वाला, राम जो भी है और शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे भी हरी कुछ भी ऐसे हरी रिक्तम मारी रिक्तम वैसे बोलने वाला, वो सब उसको लाभ होता है, लेकिन भक्त लोग चाहते हैं कि हम भाव से हृदय से भगवान का नाम जप करें। क्या आप नहीं चाहते, माइक बताइए, चाहते हैं ना हृदय से भगवान का नाम लें, तो हम लोग वहां रुकना नहीं चाहते। पर बाहर के लोगों को हम कैसे भी प्रीचिंग करें,
नहीं जैसे आज ही है, जैसे कि पहले जब मैं आया 12-13 साल पहले कर, तो मैं तब भी नाम लेना चाहता था, लेकिन एक अधिकार होता है कि जब
अग्री, लेकिन देखिए डिवोटी इज नोन बाय एस्पिरेशंस। बार बार मैं इस बात को रिपीट करता हूं, हम कहाँ हैं उससे मतलब नहीं है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। जिस दिन से व्यक्ति पहले दिन से ज्वाइन किया है उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं शुद्ध भक्त। जैसे आज ने मृदंग थोड़ा गड़बड़ बजाया है, मैंने नाट लगाई, इसका मतलब कल ये नहीं बजाएंगे, मैं ही दूंगा बोलूंगा बजाओ। अब इनका क्या ये उद्देश्य है, नहीं कल खराब बना था आज और खराब बजाऊंगा, ये तो ना है। हर व्यक्ति देख रहा है कि कोई गलती करते हैं, हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये पॉइंट प्लीज को कई बार समझ लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, फर्क इस बात पे पड़ता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये लक्ष्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भक्ति मतलब वो भक्त हृदय में शुद्ध नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा कृष्ण जब भक्ति कर रहा है तब वह कृष्ण को केवल संतुष्ट करना चाहता है, ये उसकी इच्छा।
भक्त बता रहे थे कि वो सोना नहीं चाहते हैं भक्त जपा में, लेकिन फिर भी वो सो जाते हैं, अब क्या करें, वो इच्छा तो होती है कि वो भी अच्छा सा जपा करें,
उसको मिलेगी भगवान उसको भक्तों का संग देंगे,
उनकी भी कि वो करना चाहते हैं।
बस खाली बात ही कर रहे थे कि साधन साध्य का निर्णय करने के लिए व्यक्ति के हृदय, अब जब मैं बोल रहा हूँ निर्णय मतलब उसको भी समझ में आ गया, मैं उसकी बात कहना चाहता हूँ, उसके लिए उसे पूर्ववर्ती आचार्य से प्रभु जी भी बता रहे थे भक्तों से सुनना पड़ेगा तब उसे समझ में आएगा। कई बार समझ सुनने के बाद समझ में आएगा, दैट गोल ऑफ लाइफ इज लव ऑफ कृष्णा। आगे पढ़िए,
कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रमाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो, जैसे कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर चली आ रही है।
एक विनोद की बात है, आज हम एक बड़े अधिकारी से मिले थे तो उनका ये मत था कि भगवान कृष्ण ने ये गीता नहीं बोली है, ये किन नहीं लिखी है। फिर मैंने उससे पूछा, भाई आप कहाँ तक पढ़ाई की, फिजिक्स पढ़े हैं? तो हाँ बीएससी तक पढ़ा हूँ। तो फिजिकल्स टू एमए पढ़े हैं फिजिक्स में, न्यूटन्स लॉ, हाँ पढ़ा हूँ। तो ये कैसे मालूम चला कि न्यूटन ने लिख दिया है इसको? बोला उसका रिकॉर्ड रखा गया है, तो वो सुन मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से ये रिकॉर्ड रखा गया है कि F=ma में न्यूटन ने दिया है, आप न्यूटन से नहीं मिले हो तो आप विश्वास ही तो कर रहे हो, तो फिर आप ये क्यों नहीं विश्वास कर सकते? जिस प्रकार से 500 साल मान लीजिए, मुझे पता नहीं कितने साल पहले न्यूटन साहब आए, 500 साल का रिकॉर्ड रखा जा सकता है, तो 5000 साल का रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता? जो भी है मैं कह रहा हूँ, 300 साल का 400 साल का रिकॉर्ड रखा जा सकता है, तो क्या 5000 साल का रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता? और अभी देखिए प्रोसेस सेम है, न्यूटन की थ्योरी या जो भी थ्योरम से उसको बचाए रखने का तरीका क्या है? परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। ये बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से भगवद गीता का ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा भगवान की व्यवस्था से रखा गया है, और आप दोनों ही सिचुएशंस में श्रद्धा ही रख रहे हो। अब एक दिक्कत यह है कि भगवद गीता के संबंध में जो ज्ञान उनको प्राप्त है वो बिल्कुल गलत परंपरा से प्राप्त है, इधर उधर से सुन करके प्राप्त है। तो आज मुझे मालूम महसूस हो रहा था कि कितने तथाकथित बुद्धिमान लोगों की भी कितनी गलत भ्रांति है भगवान के संबंध में, इसलिए समझ नहीं पाते वो लोग उस प्रकार से भगवान को। पढ़िए, परंपरा में ही समझ सकता है। यस,
अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं।
ये लाइन समझाइए आप, क्या मोह हो जाता है उन लोगों
जो वो
कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं? क्या मतलब इसका? कृष्ण भावनामृत का आदर्श कर्म क्या है, इसका मतलब क्या होता है? आदर्श कर्म क्या है? कृष्ण भावना का आदर्श क्या है? स्टैंडर्ड क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस? माइक पे बोलिए, सब लोग भूल गए लगता है। यस,
हर कर्म को भगवान को अर्पित करना, खाना उठना सोना जो भी हमारे कर्म है,
नॉट रॉन्ग बट नॉट कंप्लीट।
अनविलासिता शून्यम ज्ञान कर्म अनादिव्रता
अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम्। अन्य अभिलाषों से रहित होकर कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से मन वचन शरीर से कुछ भगवान के लिए करना, उसका अभ्यास करना, तो यह है आदर्श। तो इसके संबंध में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि भक्त क्यों कर रहा है। मैं फिर आपको उदाहरण दूंगा कि जैसे हमारे फार्म में गांव वाले क्या सोच रहे हैं, जैसे और लोग गपचने के लिए आए तो वो बोल रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हो, गपचने आए हो, ये हो, उसको बोलो भाई समझ में नहीं आ रहा, हम केवल गाय और भगवान के लिए कुछ उगाना चाहते हैं, सीधी बात, भक्तों के लिए कुछ उगाना चाहते हैं, ये उनके दिमाग में नहीं घुसेगा। तो बाहर के लोग जो है वही सोचेंगे कि भक्त भी इसी प्रकार से अपने कुछ भोग के लिए कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आएगा उनके, क्या किया जा सकता। पढ़िए,
इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया।
एक छोटा सा पॉइंट और भी, जब अर्जुन युद्ध कर रहे हैं और दुर्योधन युद्ध कर रहे हैं, मान लो को युद्ध करते हुए देखिए उनको, वीडियो बनाए, तो ये मालूम चल जाएगा कि कौन व्यक्ति कम एंथुजियास्टिक है। दोनों ही एंथुजियास्टिक है, अर्जुन भी एंथुजियास्टिक लड़ रहे हैं और दुर्योधन भी लड़ रहे हैं, लेकिन मोटिवेशन में कितना अंतर, तो बाहर से व्यक्ति मोहित हो जाएगा। और लोग बोलते भी संबंध में कृष्ण ने तो युद्ध कराया, कर्ण बहुत अच्छा व्यक्ति था, ये था वो था, तो ये लोग मोहित हो जाते हैं कि भक्तों का भाव क्या होता है। पढ़िएगा,
अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पद चिन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा।
बहुत सुंदर एक बात कहना चाहता हूँ, चतन चरण ने बहुत अच्छी बात बोली। वो कह रहे थे कि जैसे अंधकार एक कुप अंधकार है, तो आप अपने फोन से उस पूरे अंधकार को नष्ट कर सकते हो, तो फोन की टॉर्च लाइट है, क्या उससे पूरे अंधकार को नष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा अंधकार नष्ट कर सकते हैं वो उतना उतना पर्याप्त होगा कि आपको अपना अगला स्टेप दिख जाता है। बहुत ही गंभीर लाइन उन्हें बोली, ये तो उन्हें उदाहरण दिया। शिक्षा क्या है, कभी कभी हमें जीवन में समझ में नहीं आएगा कि हमें करना क्या है, लेकिन एक हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल है, पूरा अंधकार है कि क्या करना है, कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं और इस समय मैं इस परिस्थिति में कृष्ण की सेवा कैसे कर सकता हूं, बस ये देखूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत गंभीर बात है ना। महाराज एक बार बता रहे थे कि कभी कभी इससे भीष्म पितामह के केस में कभी कभी हाथ भी नहीं हिला सकता, ऐसी स्थिति भक्त की आ जाती है। मेरे को इसी जगह में यहीं पे लेटा हुआ था मैं, डेंगू था, तो डेंगू में आप ऐसा इतनी हालत खराब हो जाती है कि आप अपना हाथ भी नहीं उठा सकते, बोलने की तो बात छोड़ी, ऐसी भी स्थिति भक्त की आ जाती है। जवानी में भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि कोई वृद्धावस्था में आए, लेकिन गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि भगवान कृष्ण, गाइडिंग मतलब समझते हैं इसका, गाइडिंग प्रिंसिपल यही है, लाइट प्रिंसिपल यही, लाइटनिंग प्रिंसिपल यही है कि हम भगवान कृष्ण के दास हैं और कृष्ण भाव को स्वीकार करते हैं तो उसको हम कोई भी रूप में सेवा कर सकते हैं। जैसे विभु चैतन्य प्रभु के बारे में हमने सुना होगा कि वो एकदम वृद्ध हो गए तो जो भगवान की माला उसे खोल के फिर से माला बनाते थे ऐसे करके, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन टू मेक इट लाइक दिस। तो भगवान को उनके भक्तों कुछ 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 गिफ्ट, उसके कुछ गिफ्ट बना करके भक्तों को जो उनके रूम पे आते थे उनको दिया करते थे। ये कहने का अर्थ बहुत अच्छा बात है कि हम मोह से पूरी तरह दूर रहेंगे अगर हम ये बस ये विश्वास करके भगवान की सेवा में लगे रहें कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ। यस,
कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता।
क्या मतलब है इसका? अपूर्ण प्रायोगिक मीन्स इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, अपने इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसके द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता।
वस्तुतः धर्म को केवल भगवान,
जैसे एग्जांपल देता हूँ, इन्हें पूछा था, कृष्णा प्रभु पूछ रहे थे, कह रहे कि एक चोर जो है चोरी करना चाहता है और एक जो है जो धनवान है वो अपना पैसा बचाना चाहता है, तो भगवान किसकी पक्ष, किसका पक्ष लेंगे, क्या उत्तर है?
इसकी इच्छा तीव्र होगी।
देखिए अब देखो कितना कितना कठिन आ रहा है ना, अगर भगवान के हम मान लीजिए एडवाइजर होते कि भगवान क्या करना है तो बड़े हम कठिन में कठिनाई भी पड़ जाती है। ये उत्तर थोड़ा मुश्किल है। पैसे बचाना अच्छी बात है और चोरी करना गलत बात है, ये सब उत्तर आ रहे हैं। देखिए अब यही हो गया अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान, इसका उत्तर दीजिए।
किसका कर्म फल के अनुसार किसको क्या मिलना चाहिए?
कर्म ना कर्म फल के अनुसार है, उसमें भगवान लिप्त नहीं होते, ये तो हम सीख रहे हैं गीता में अभी। ठीक है,
वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते हैं।
धर्मम तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम्।
अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा शिव नारद मनु चारों कुमार कपिल प्रहलाद भीष्म सुखदेव यमराज जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है।
देखिए यही बात मैं थोड़ी देर पहले सब चाह रहा था कि अशुद्ध हृदय से केवल अपनी बुद्धि के द्वारा साधन साध्य का निर्णय नहीं कर सकता, उसे पूर्ववर्ती आचार्यों से सुनना पड़ेगा। यहां तक कि क्या नाम है उनका, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, महाप्रभु ने उनको हराया था, क्या नाम था उनका?
प्रकाशानंद सरस्वती
हैं,
केशव भारती।
नहीं, केशव भारती तो उनके गुरु थे। प्रकाशानंद सरस्वती नहीं, केशव कश्मीरी नहीं, एक और थे, और इस हाँ सार्वभौम भट्टाचार्य, वह उनको भी जो कितने बड़े शास्त्रों के पंडित थे वह भी महाप्रभु से पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, तो उन्हें बताया भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना। तो ऐसे व्यक्ति को भी, इतने शास्त्र के व्यक्ति को भी भगवान से गुरु से सुनने की आवश्यकता है। पढ़िए,
अतः भगवान अपने भक्तों पर अहत की कृपा अवश्य।
मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ जो मैंने कल ही पढ़ा था कि देखिए भगवान कितने मधुर हैं, भगवान कितने ऐश्वर्यशाली हैं, इसका प्रकटीकरण केवल कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों को ही करते हैं। केवल बुद्धि के द्वारा इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। गिरिराज जी को आप भी देखते हैं, गिरिराज जी को रघुनाथ दास हम सभी देखते हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी भी देखते थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को जो अनुभव कृष्ण दे रहे हैं वह उनकी भक्ति के कारण है। तो उनके अनुभव हमको प्राप्त करने होंगे कि उन्हें दिव्य साक्षात्कार प्राप्त है। क्या मेरी बातें समझ रहे हो? जैसे प्रभुपाद जी ने सिंपल, हमारा जो श्रद्धा है क्या है, प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारी कोई भी समस्या हो तुम कृष्ण बलराम जी के पास जाओ और बोलो भगवान ये मेरी समस्या है, तो प्रभुपाद जी का साक्षात्कार है, वो भगवान से बात कर सकते हैं। हम उनकी श्रद्धा पर श्रद्धा रख, उनकी वाणी पर श्रद्धा रख करके भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, समझ रहे? जैसे कि प्रताप रुद्र को सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, और फिर आगे जाकर के उन्हें उस श्रद्धा से महाप्रभु को स्वीकार किया, बाद में भगवान ने यह उनको रिवील भी किया, प्रकट भी किया कि वह किस प्रकार से भगवान है, किस प्रकार से जगन्नाथ जी से अभिन्न है। मैं लीला अभी नहीं बता रहा हूँ, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। तो हम खाली कह रहे हैं कि गुरु की अनुभव और गुरु की वाणी को सुन करके व्यक्ति श्रद्धा करे, आस्तिक की श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा के अनुसार कार्य करेगा तो भगवान को समझ सकता है। पढ़िए,
अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावना व्रत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है।
आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय।